मेरे ताकत के बल पर आज जो मुझे करना था वो मैंने पूरा कार्य कर लिया। आज मेरे कुल के ऊपर एक बहुत बड़ी कलंक की बात थी कि तुम्हारी स्त्री को एक रावण ले गया और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो, ऐसा मुझे कोई नहीं कह सकता क्योंकि मैंने अपने सीता को प्राप्त किया है। परंतु सीते, जब तुम मेरी आंखों के सामने रहते हो उस समय में मुझे ऐसा कष्ट होता है जैसे किसी के नेत्र में खराबी हो और उसके सामने दीपक जगता हो, उस प्रकार से तुम्हें देखकर मेरे मन में पीड़ा होती है। सीते, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं, जहां जाओ वहां जा सकती हो। आकाश में जाओ, पाताल में जाओ, दाएं जाओ, बाएं जाओ, उत्तर में जाओ, दक्षिण में जाओ, और अग्नि में जाओ, ईशान में जाओ, वायव्य में जाओ, नैऋत्य में जाओ, यही तो है दस दिशाएं, कहीं भी जाओ जा सकते। ऐसा कौन संसार में पुरुष होगा कि जो दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को, लंबे समय तक रही हुई स्त्री को वापस उसको अपने घर में रख लेगा केवल इसलिए कि इसका मेरे साथ में पाणी ग्रहण हुआ है, इसका मेरे साथ अग्नि की साक्षी में विवाह हुआ है, मैं इसको अपने घर में रख लूं। ऐसा कौन पुरुष हो सकता है? रावण की गोद में तुम आकाश में गई थी, उस दुष्ट ने तुम्हें देखा था, उस दुष्ट के हृदय में तुम बसी हुई थी, इस कारण से तुम मेरे योग्य नहीं रही हो। जा सकती हो सीते, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। सुग्रीव के साथ जाओ तो सुग्रीव है, लक्ष्मण के साथ जाओ तो लक्ष्मण यही है, विभीषण के साथ जाओ तो विभीषण के साथ जा सकती हो। जहां तुम जाओ वहां तुम चली जाओ, भरत के पास जाओ तो जा सकती हो। ऐसा मत समझना कि मैं कहीं राम के घेरे में बंधी हुई हूं। जहां तुम्हारा मन हो वहां तुम जा सकती हो। तुम्हारे जैसी सुंदर स्वरूप वाली सीता को देखकर वो रावण अपने मन के अंदर तुमको बसाया हुआ था, अतः तुम्हारा स्वरूप किसी और के मन में बसा हुआ हो और तुम मेरे पास बैठ जाओ, तुम मेरे साथ में रहो, कैसे संभव हो सकता है? जाओ सीते, तुम्हारे सब रास्ता खुला है, तुम मेरी आंखों से ओझल हो जाओ। सीता को विश्वास भी नहीं था, बंदरों को भी कुछ विश्वास नहीं था, राक्षस बानर सुग्रीव सब पूर्ण स्तब्ध हो गए और उस समय उनके द्वारा कोई शब्द नहीं निकला। सीता जी राम जी की ओर आंख फाड़ फाड़ करके देखने लगी। सीता जी के आंखों से आंसू आए कि क्या यही बात सुनने के लिए मैं जिंदा थी? क्या रावण को मार करके मेरे भर्ता इसी बात को सुनाने के लिए ही मुझे बुलाए थे? क्या यही बात कहने के लिए रावण को मारा था? ममूच वाष्पम रुदती तदा भृशम गजेंद्र हस्ता भी हतेव बल्लरी। जिस प्रकार से कोई लता हाथी के द्वारा तोड़ दी जा रू, लता लटपटाती रहती है, लता यूं हाथी की सूंड में घूमती रहती है, ऐसे सीता चिंता के अंदर घूमती रही। सीता को ये वचन बहुत अप्रिय लगे और उसके बाद सीता बड़ी व्यथित हो गई। व्यथित होकर के सीता को बड़ी लज्जाई, इतने मनुष्यों के बीच में और इतनी कठोर बात मुझे कही है। इन बानरों के मन में, हनुमान के मन में, सुग्रीव के मन में, विभीषण के मन में क्या मेरे प्रति भावना है और इनके बीच में राम कैसे मुझे बोल रहे हैं? वाणी के इन बाणों से सीता बहुत घायल हो गई और वो अविरल अश्रु बहाती रही और अविरल अश्रु बहाकर के बड़ी गदगद वाणी में उस समय उसने सीता ने कहा कि माम असदृशम वाक्यम, हे आरी पुत्र, ऐसे आपके लिए अयोग्य वचन आपके मुंह से कैसे निकल रहे हैं? इनसे आप शोभा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। आपके इन शब्दों से हमारे कानों में बड़ी पीड़ा होती है, जैसे मुझे देखकर आपके आंखों में पीड़ा होती है, ऐसे आपके शब्दों से मेरे कानों में पीड़ा होती है। आप इतने रूखे हो गए, ये तो सामान्य पुरुषों की सी बात है, सामान्य स्त्रियों की बात है। मैं ऐसी नहीं हूं जैसा आप मुझे सोच रहे हैं। मैं अपने चरित्र की सौगंध खा के बोलती हूं, आपको मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए। कोई एक गई गुजरी औरत कुछ होती होगी तो उसके अर्थ यह नहीं कि सारी स्त्री जाति पर आप कलंक लगाएं। सारी स्त्री जाति का इस प्रकार से अपमान करना आपके लिए उचित नहीं है महाराज। आपको अपनी शंका अपने मन से निकालना चाहिए। यदि आपने इतने वर्षों तक मेरी परीक्षा की है तो आज भी मैं आपके सामने परीक्षा में सफल होकर के बताऊंगी। आपको यह मालूम है कि रावण ने मेरी बिना इच्छा से बलपूर्वक वो मेरा स्पर्श करके अपने शरीर में मुझे लेकर वो आकाश में गया था। उसमें मैं क्या कर सकती थी? स्त्री का शरीर इतना बलवान नहीं होता, उसका मन बलवान होता है। रावण ने मेरा मन तो नहीं लिया ना, वो शरीर को तो ले जा सकता था क्योंकि शरीर में इतनी मेरी ताकत नहीं थी। पराधीनेशु गात्रेशु, शरीर तो पराधीन है महाराज, मन मेरे अधीन है, मन मेरे स्वाधीन है। आपने यदि इतनी बात थी तो क्यों आपने हनुमान को मेरे यहां भेजा? हनुमान को बोल देते कि हनुमान जाओ सीता से कह दो कि तुमको मरना है वहां मर जाओ, करना है सो कर लो। जो बात आज आपने मुझे कही है मरने से भी ज्यादा दुख देने वाली बात, उस दिन आपको हनुमान से बोल देना चाहिए था। मैं तो मरने के लिए तैयार थी। मेरे पास इतनी राक्षसियां थी, किसी का शस्त्र लेकर मैं आत्मघात कर सकती थी। मैं तो मरने के लिए तैयार थी। मेरी तो चोटी लेकर मैंने टहनी से अपनी फांसी लगाने के लिए पूरी कोशिश करने में तैयार हो गई थी, लेकिन हनुमान ने आकर मुझे आपके विषय में संदेश सुनाकर बचा लिया। ऐसी बात थी तो आपको वही करना था। मैं मेरा मर जाती, आप रावण को जीतते, वो आप अपने कुल के लिए जो करना था वो करते रहते, लेकिन मैं उस समय मर करके आज ये कठोर शब्द नहीं सुनती। महाराज त्वया संत्यक्तया वीर त्यक्तम स्यात् जीवितम मया, कितने खुले आप बोल दिए कि चाहे जहां चली जाओ। आप जब मेरा त्याग कर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरे प्राणों के नाथ है ना। आपने त्याग ले लिया, आपने मेरा त्याग कर दिया तो मैं अपने प्राणों का त्याग करने का बड़ा सुगम मानती हूं। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरा शरीर चला जाएगा तो आपका परिश्रम व्यर्थ थोड़ा ही जाएगा, क्योंकि आपने अपने कुल की तो रक्षा कर ली और मैं भी मेरे कुल की रक्षा कर ली, मैंने भी मेरी चरित्र की रक्षा कर ली। इसलिए हे नरश्रेष्ठ, क्रोध को बंद कीजिए, आप क्रोध मत कीजिए। और एक सामान्य मनुष्य के समान एक स्त्री के ऊपर इतना कोप भी मत कीजिए। आपको मालूम होगा मैं कोई सामान्य स्त्री नहीं हूं, मेरी उत्पत्ति और स्त्रियों के समान भी नहीं हुई है। मैं कोई जनक जी के शरीर से पैदा होने वाली नहीं हूं, मैं जमीन से पैदा हुई हूं, इसलिए मेरा नाम सीता। इस बात को आप खूब अच्छी तरह से जानते हो। मेरा छोटी अवस्था में आपके साथ विवाह हुआ है, तब से आप मुझे जानते हो। मेरी भक्ति, मेरा शील, मेरा व्यवहार, इन सब को आपने एकदम धकेल दिया और इन सब के बीच में चाहे जैसी बात आपने लांछन के लिए मुझे कह दी। क्या आपके द्वारा ये कहना शोभा देता है? इतना कहकर के सीता जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण जी की तरफ देख करके, उस समय में लक्ष्मण जी आंख बंद किए हुए थे, लक्ष्मण जी टप टप आंसू बहा रहे थे। सीता जी ने देखा तो लक्ष्मण जी ने सीता को देखा और फिर लक्ष्मण जी को जो वहां क्रोध आया है, इतना क्रोध आया लक्ष्मण जी एकदम लाल हो गए, आंख निकालने लग गए, राम की तरफ देखने लगे, लक्ष्मण जी के आंखों से आंसू आने लगे। सीता जी ने लक्ष्मण जी की ओर देख करके कहा, राम जी को भी कहा, लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण सब बंदरों के सामने, रीछों के सामने, सब सेना के सामने, यहीं इनके बीच में मेरे लिए एक चिता बनाई जाए। रावण की चिता तो मरे हुए शरीर को जलाने के लिए थी, लेकिन आज ये मेरी चिता मेरे जीते हुए शरीर को जलाएगी, देखती हूं। अप्रतीन गुणैर भरता त्यक्ताया जनसंसदी, इतने लोगों के बीच में यदि पति एक पत्नी का त्याग करते हैं तो उस पत्नी का जीने का क्या अर्थ होता है। ठीक है, मैं भी आज अग्नि में प्रवेश करके ये बता देना चाहती हूं कि श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री कैसी होती है। लक्ष्मण जी महाराज तो अमरसम आपन्न है, बहुत क्रोधित हुए। क्रोधित होकर के राम जी की ओर देखे तो देखो सीता ने जब लक्ष्मण को देखा और क्रोधावेश में जब लक्ष्मण जी ने राम जी को देखा तो सीता जी का मुंह तो उधर था, राम जी ने लक्ष्मण को इशारे से इशारा कर दिया। इशारे में लक्ष्मण जी समझ गए। लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ माता जी, अभी चिता बनाता हूं, अभी लकड़ी लाता हूं, आपके जैसी आज्ञा वैसी करता हूं। इतना जल्दी क्या हुआ, राम जी ने सब समझा दिया। अब देखो कि ये फटकार क्यों लगाई। फटकार इसलिए लगाएगी, सीता जी आज तुमको हम बोलते हैं तो आपको कितना बुरा लगा, और आपने जिस समय में मैं मारीच को मार करके गया, मारीच को मारने गया था, और मारीच ने जब सीते लक्ष्मण की मेरी आवाज लगाई, तुमने लक्ष्मण के ऊपर कैसा संदेह किया था, तुमने लक्ष्मण को कैसा फटकारा था, तुमने लक्ष्मण के ऊपर चरित्र का दोष लगाया था। यदि तुम दोष नहीं लगाती तो आज तुमको ये दशा नहीं भोगनी पड़ती। दूसरों पर दोष लगाना तो सुगम है सीते, अपने द्वारा दूसरों पर दोष लगाना सुगम, लेकिन तुम्हारे पर दोष लगाए तुम्हारे पर क्या बीतती है। सीता जी को ज्ञान है, लक्ष्मण जी को इशारा किया, वहां पर चिता बनाई गई, और चिता बना करके अधोमुखम स्थितम रामम, चिता बनाई गई, चिता को देखा, चिता में अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। सीता जी ने राम की ओर देखा, राम जी की परिक्रमा की, परिक्रमा करके चिता के पास जाते जाते सीता ने कहा, हाथ जोड़ते हुए कहा, हे अग्नि देवता, यदि मैंने अपने हृदय से एक क्षण के लिए भी राम को मैंने दूर नहीं किया हो तो तुम शीतल होकर के रहना। हे अग्नि, जैसा राम जी मेरे चरित्र के ऊपर संदेह कर रहे हैं, यदि वो संदेह बिल्कुल गलत है तो तुम सारे संसार को जो इस समय साक्षी है उसको बता दो कि अग्नि भी ऐसी सीता को जला नहीं सकती है। मैं अपने मन से, कर्म से, वाणी से राम के अतिरिक्त किसी और का चिंतन नहीं किया है, तो तुम बता दो सारी दुनिया को कि अग्नि भी जिसका कुछ नहीं कर सका उसके लिए रावण तो बेचारा कर भी क्या सकता था। बता दो आज, हाँ आकाश में सूर्य है, वायु है, दिशाएं हैं, चंद्रमा है, दिन है, संध्या है, रात्रि है, ये पृथ्वी है, ये सब आज मेरी साक्षी में है। आप सबके सामने मैं चिता में प्रवेश करती हूं, और यदि मैं चरित्र से शुद्ध हूं तो आपसे फिर मिलूंगी, और आपके बाद और आपसे मैं फिर बात करूंगी। इतना कह करके अग्नि की परिक्रमा करके सीता जी ने अपने शरीर को अग्नि में रख दिया। अग्नि में रखते ही वे बानर सब रोने लग गए। राक्षसों के मन में भी बड़ी जो है वेदना हुई। उस समय में अग्नि और बढ़ती गई, अग्नि बढ़ती गई, अग्नि बढ़ती गई। पर ये क्या, अग्नि जल रही है, बड़े बड़े काष्ठ हैं, जल रही है, लेकिन सीता उसमें मुस्कुरा रही है। सीता का जो तेज था वो तेज और तेजस्वी हो गया। सीता के कपड़े है जैसे ही है, सीता जी की चमड़ी भी है जैसी है, सीता जी के आभूषण भी वैसे के वैसे ही हैं। इतनी विशाल अग्नि प्रज्वलित हो रही है, फिर भी सीता दम स्वस्थ है, और विशेष रूप से चमकी है, और ज्यादा चमकी है। उस समय में आकाश से देवता लोग आए, ऋषि लोग आए, वे सब आए, स्त्रियां भी आई, और आकर के तरह तरह का मंत्र बोल बोल करके सीता को आशीर्वाद देने लगे। और सीता को देखकर सबके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सब सीता के अग्नि के सामने देवता ऋषि वगैरह सब खड़े हैं और राम जी महाराज भी वहीं पर खड़े हैं। सीता अग्नि में जल नहीं रही है लेकिन अग्नि में जल भी रही है। ये सब देख करके सब आश्चर्य में डूबे हैं कि हे राम, आप सृष्टि के कर्ता होकर, ज्ञानियों के वक्ता होकर, सीता के भर्ता होकर, संसार के संहर्ता होकर सीता को अग्नि के अंदर देख करके भी आप उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, आप उसको बचा नहीं रहे हैं, क्या बात है? आप हम सब देवताओं में, सारी सृष्टि में सर्वोत्तम है, सर्व महान है, इस बात को आप भूल कैसे रहे हो महाराज? त्रिलोकी के आदि कर्ता आप ही तो हो, रुद्र के आठवें रुद्र आप ही तो हो, साध्यों में पांचवें साध्य आप ही तो हो, सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं तो अश्विनी कुमार आपके कान हैं। हे महाराज, न आपका आदि है न अंत है न मध्य है। फिर आप एक प्राकृत मनुष्य के समान सीता की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? लोकपालों के द्वारा ये बात सुनकर के त्रिलोकी के स्वामी भगवान श्री राम, जो कि धर्मिष्ठ हैं, उन्होंने देवताओं से कहा, अच्छा आपने मुझे त्रिलोकी का स्वामी कहा है, भाई मैं तो अपने को एक दशरथ का लड़का मनुष्य ही मानता हूं। अच्छा बताओ तो मैं कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, क्या मेरा प्रभाव है, ये आप हमको बताओ। तो देखो अब इसके सुनने का बड़ा फल है, बड़े प्रेम से सुनना। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे महाराज सुनिए, आप भगवान नारायण हो, आप सुदर्शन चक्रधारी हो, एक सींग लेकर के मत्स्यावतार धारण करने वाले आप ही थे, वराह रूप से आपने पृथ्वी का उद्धार किया था, निर्गुण निराकार का जो अक्षर और अद्वैत तत्व है वो भी आप ही हो, ब्रह्म तत्व इस सगुण रूप से अलग नहीं है, सृष्टि के आदि में अंत में मध्य में आप उसी प्रकार से हो जैसे घड़े के आदि मध्य और अंत में मिट्टी है, गहनों में जैसे आदि मध्य और अंत में सोना है। आप विश्वक्सेन हो, आप चतुर्भुज हो, आप सारंग धनवा हो, आप ऋषिकेश हो, आप तलवार धारण करने वाले साक्षात विष्णु हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही सेनाओं में अग्रगण्य हो, आप ही बुद्धि के देने वाले हो, आप ही मधुसूदन हो, आप इंद्रकर्मा हो, आप पद्मनाभ हो और शरणागतों के शरण्य आप ही हो, वेदात्मा हो, हजारों सिर वाले हो, लाखों करोड़ों सिर वाले हो। देखो लाखों करोड़ों सिर का अर्थ है कि जितनी सृष्टि में सिर दिखते हैं ये आप ही के हैं, क्योंकि वासुदेव सर्वम, जो कुछ है सो आप ही हो, तो सबके सिर आप, सबके पैर आप, सबके हाथ पैर भी आप, हाथ पैर सबके आप ही के हैं। आप ही यज्ञ हो, आप ही ओंकार हो, आप ही संपूर्ण प्राणियों में दिखते हो और विशेषतः ब्राह्मणों में और गौओं में आपका स्वरूप विशेषता से दिखता है। आप सहस्रदृक हो, आप पृथ्वी के समान सबको धारण करने वाले हो, जिस प्रकार से पृथ्वी के पदार्थ पृथ्वी में लीन होते हैं, ऐसे सारे संसार आत्मा आप में लीन होता है। हे राम, मैं ब्रह्मा आपका हृदय हूं, सरस्वती देवी आपकी वाणी है, देवता लोग आपकी रोमावली है, और रात्रि और दिन ये आपके आग झपकने हैं, वेद हैं ये आपके संस्कार हैं, सारा शरीर सारा जगत आपका शरीर है, अग्नि है वो आपका कोप है, आपकी क्रोध ही वो संसार में अग्नि के रूप में दिखती है, चंद्रमा है वो आपकी कृपा का स्वरूप है। देखो कोई आदमी आ जाए और कह दे हम तो चतुर्भुज ब्रह्मा, हम तो चतुर्भुज भगवान हैं, जो है दिखे तो वो भगवान होता है। संपूर्ण संसार को आपने अपने में आक्रांत कर रखा है, अपने में समेट रखा है। आप इन्हें वामन रूप से बलि को बांध करके पृथ्वी आकाश स्वर्ग सब इंद्र को दिया था। आप महाराज कितने ही छिप जाओ, लेकिन आप साक्षात विष्णु हो, सीता लक्ष्मी है, आप और लक्ष्मी दोनों कभी अलग नहीं रह सकते हो। रावण के वध के लिए ही ये लक्ष्मी जी सीता बनी और आप राम बनकर के आए हो। आज ये रावण मारा गया, सारे त्रिलोकी में बड़ी शांति हो गई। आपका कार्य कभी व्यर्थ नहीं होता, आपके दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होते, और जो कोई आपकी स्तुति सुनता है और कहता है वो भी व्यर्थ नहीं होता है। संसार में जो लोग आपकी भक्ति करते हैं उनकी भक्ति भी व्यर्थ नहीं जाती है। आप पुराण पुरुषोत्तम हो और इस लोक में परलोक में सब लोगों के साथ में रहने वाले हो, और ये जो स्तोत्र हमने कहा है इसका जो कीर्तन करेगा उसका कभी भी पराभव नहीं होगा। ये बात सुनकर के उसी समय में अग्नि सीता को लेकर के जो है चिता से बाहर आई। मूर्तिमान अग्नि ने अपने हाथ में सीता को लेकर, जो सीता बहुत दिव्य वस्त्र पहनी हुई थी, जो सीता दिव्य अलंकारों से युक्त थी, जिस सीता के गले में लाल पुष्पों की माला थी, जो सीता बहुत सुंदर रूप वाली थी, उस सीता को लाकर राम जी के हाथों में सुपुर्द किया, ठीक वैसे ही जैसे जनक जी महाराज ने सीता को दिया था। और अग्नि ने कहा, हे राम, सीता बिल्कुल निर्दुष्ट है, हम लोग अव्यक्त रूप से सदा सीता का साथ देते थे, अशोक वाटिका में सीता अकेली नहीं थी, हम सब देवता इसकी रक्षा करते थे, वाणी से मन से बुद्धि से दृष्टि से भाव से सीता में लेश मात्र भी पाप का लक्षांश भी विद्यमान नहीं। रावण के शरीर में बल था, हे राम, रावण में वो शरीर का बल सीता के हरण के समय में हम देवताओं ने इसलिए दिया था कि रावण के पाप का घड़ा भर जाए और जल्दी से जल्दी रावण का संहार हो जाए, इसलिए हमने रावण को बहुत बल दिया था। सीता विवश थी, सीता का बल ही हमने रावण को दिया था। यदि उस समय सीता के पास में हम अपना बल रखते और रावण जी सीता को वहां से नहीं ले जाता तो आज वो कुल समेत नष्ट नहीं होता। यदि सीता रावण को पंचवटी के अंदर ही भस्म कर देती तो एक रावण ही मरता, परंतु लंका में तो पैदा होने वाला एक एक राक्षस रावण ही तो था, उन सब रावणों का विनाश कैसे हो। पापी का नाश हो लेकिन पाप के समर्थन करने वाले जब तक बैठे हैं तब तक एक पापी का शरीर गया है, पाप नहीं गया है। रावण के साथ जब तक उनके पक्ष रखने वाले लोग जीवित हैं तब तक तो पाप रहेगा ही, और आपका काम तो पृथ्वी पर पाप को हल्का करना, पाप का नाश करना था, नहीं तो पाप का नाश कैसे होता है। आपके बिना ये सीता निर्जन अंतपुर में रहते हुए भी आपके स्वरूप का अपने चित्त में ध्यान करती रहती थी, घोर राक्षसों से सर्वथा निर्भय होकर रहती थी। इसने आपके अलावा किसी और का चिंतन नहीं किया, इसलिए सीता सर्वथा निष्पाप है, विशुद्ध है। सब बंदरों राक्षसों के सामने हम लोग प्रमाण दे रहे हैं, सब देवता लोग आए हैं, ब्रह्मा वगैरह सब आए, सबके बीच में हे राम आपसे एक बात और अंत में बोलते हैं, और हम आपको ये आदेश देते हैं कि आज के बाद सीता को ऐसे कठोर वचन आप अपने जीवन में कभी नहीं कहेंगे। राम जी महाराज ने ये शब्द सुने, राम जी महाराज का मन प्रसन्न हो गया। धर्मात्मा श्री राम ने बड़े धैर्य के साथ इंद्रादि देवताओं को कहा, हे देवताओं, मैंने सीता को बहुत कठोर वचन इसलिए कहे थे कि आप लोग आकर सीता का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, आप लोगों को बुलाने के लिए ही मैंने ये सब कुछ किया था। सीता को केवल मैं शुद्ध मानता हूं, लेकिन दूसरी दुनिया तो नहीं मानती ना। आज सारी दुनिया को मैं कह सकता हूं कि भाई तुम्हारी अपनी कोई खोटाई है, वो खोटाई से तुम कैसे बोलते हो, देवताओं के सामने सीता शुद्ध हो चुकी है, सब ब्रह्मा आदि के सामने प्रमाण से शुद्ध हो चुकी है, सीता अग्नि के अंदर जली नहीं है। ये सब घटना हुई तब न सीता की शुद्धि का सबको ज्ञान होगा, नहीं तो लोग बोलते कि दशरथ का बेटा राम स्त्री का लोभी है, मूर्ख है, और वो इस बात को समझता नहीं है कि पराए घर में रही हुई स्त्री को वो क्यों लेकर के आया है। सीता अनन्य हृदया है, सीता मच्चित्ता परायणा है, इस बात को मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूं, परंतु मैंने आप लोगों को जनाने के लिए नहीं, मेरे मन के भाव आप आकर मुझे कहो, इस बात के लिए मैंने ऐसा किया है। रावण, रावण सीता के तेज के सामने कुछ भी नहीं था। रावणो नातिवर्तित वेलामिव महोदधिः, समुद्र अपनी सीमा का लंघन नहीं करता, रावण की एक सीमा बंधी हुई थी। यदि रावण उस सीमा का उल्लंघन करता तो रावण के कभी टुकड़े हो गए होते, लेकिन रावण अपनी सीमा जानता था। ऊपर से वो सीता को कठोर वचन कहकर के भी सब जनता को, सब लोगों को ये बताना चाहता था कि एक पति परायणा में कितनी बड़ी शक्ति होती है कि त्रिलोक विजयी रावण एक पतिव्रता को जीत नहीं सकता है। पतिव्रता के ताकत को बताने के लिए ही रावण इतना सब कुछ कर रहा था। वो दुष्टात्मा सीता को मन से भी ले नहीं सकता था, क्योंकि कोई भी जहर को पी करके जी नहीं सकता है। रावण के अंतपुर में रहते हुए भी सीता तो मेरे ही हृदय में बसी हुई थी। ये सीता अत्यंत शुद्धा है, न विहा तुम मया शक्या। आप देवताओं के सामने मैं कहता हूं कि मैं सीता मेरे से त्याज्य नहीं हो सकती। जिस प्रकार मनुष्य अपनी कीर्ति का त्याग अपने से नहीं कर सकता, उसी प्रकार से सीता का भी मैं त्याग नहीं कर सकता हूं। आप लोगों के वचन मैंने सुने हैं, इन वचनों का मैं पालन करूंगा, और आप सबने जो हित की बात कही है वो आप लोगों की योग्य बात है, उस बात को मैंने धारण किया है, मैंने पहले से विचार किया है, अतः आप लोग इस विषय में कोई संदेह न करें। इत्येवम् उक्त्वा विजयी महाबलः प्रशस्यमानः स्वकृतेन कर्मणाम् समेत्य रामः प्रियया महायशः सुखम् सुखारोनु बभूव राघव। इस प्रकार से विजयी महाबलशाली श्री राम ने बड़ी प्रशंसा की सीता जी की, देवता लोग वगैरह भी सब बड़े प्रसन्न हो गए। सब जगह आनंद ही आनंद महान आनंद छा गया और सब आनंद में रह गए। आज की कथा को अब यही विराम देते हैं।
Please.